10 अगस्त शनिवार, बीबीसी इंडिया बोल, मैं हूं आदर्श राठौर। भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को किया खत्म। गृहमंत्री ने कहा, भारत सरकार ने 370 को निष्प्रभावी बनाकर ऐतिहासिक भूल को सुधारा। क्या वाकई ऐसा है? साथ ही सवाल ये कि इस फैसले से दक्षिण एशिया में कहीं अस्थिरता और हिंसा का नया दौर तो शुरू नहीं हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस बार चर्चा इसी विषय पर? अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मोहम्मद शाहिद से। जम्मू के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटाने के बाद अभी भी जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू है। बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर का कहना है कि जम्मू के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ में अभी भी कर्फ्यू है। वहीं कल श्रीनगर के सौरा इलाके में विरोध प्रदर्शन किया गया था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि बकरीद और उसकी तैयारियों के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बीबीसी संवाददाता ने बताया है कि कर्फ्यू के छठे दिन कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में अभी भी सख्त नाकेबंदी लागू है, जबकि कम संवेदनशील इलाकों में लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज अनंतनाग का दौरा किया है। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके कारण केरल में अब तक 40, महाराष्ट्र में 28 और कर्नाटक में 24 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में ऐसी स्थिति 45 सालों बाद हुई है और इससे 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सतारा और सांगली समेत 5 जिलों से 2,00,000 लोगों से को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इन राज्यों के अलावा गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बाढ़ की समस्या है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए आज दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई है। बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक से बाहर आ गए। उनका कहना था कि वो अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे और उनके नाम को गलती से सूची में शामिल कर लिया गया था। कार्यसमिति ने 5 उपसमितियां बनाई हैं जो आज रात 8 बजे नए अध्यक्ष पर अपनी राय देंगी। वहीं कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी से फिर एक बार अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने बताया,
देखिए बातचीत चल रही है। जो हमारे सारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, सचिव हैं और दूसरे जो संगठन हैं हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लीडर सबसे बातचीत हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज भी बैठक हुई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेम्बर्स की, नेताओं की वही राय है जो 25 मई को थी। राहुल जी से सबने आग्रह किया कि आप पद पे बने रहे।
ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तंजानिया में एक टैंकर धमाके में कम 60 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। दार एस सलाम शहर से पश्चिम में 200 किलोमीटर दूर मोरोगोर में ये घटना हुई है। सोशल मीडिया पर डाली जा रही तस्वीरों में जलता हुआ मलबा दिखाई दे रहा है और जले हुए शव जमीन पर पड़े हैं। स्थानीय पुलिस प्रमुख ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोगों में मोटरसाइकिल सवार, टैक्सी ड्राइवर और दूसरे स्थानीय लोग थे जो टैंकर से तेल निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया,
katika mshangao sasa mimi nashangaa na sikia moto umelipuka kule. I was surprised to hear a huge explosion.
मैं एक बड़ा धमाका सुनकर चौंक गया, जिसके बाद लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। मैं नीचे गिर गया और मेरे घुटनों में चोटें आई हैं। मैंने लोगों को तेल और पानी निकालते हुए देखा, हर कोई व्यस्त था, कोई भी तेल के खतरे के बारे में नहीं जान रहा था। ये थे तंजानिया धमाके के एक चश्मदीद के शब्द। शंघाई के नज़दीक चीनी तट से एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान टकराया है, जिसके कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इस दौरान 16 लोग गुमशुदा भी हुए हैं और कई नज़दीकी जगहों पर बाढ़ भी आई है। शंघाई में ही कल से भारी बारिश हुई है, जिसके कारण 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक महीने के अंदर निष्पक्ष चुनावों को लेकर चौथी बार बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि इस रैली में 40,000 लोगों ने भाग लिया है। हालांकि पुलिस का अनुमान है कि लोगों की संख्या इसकी आधी भी नहीं है। इस विरोध प्रदर्शनों को प्रशासन की अनुमति है। इससे पहले हुई रैलियों के दौरान हिंसा और गिरफ्तारियां हुई थी। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में, मैं हूं आदर्श राठौर। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विषय आपको एक बार फिर से बता दें, क्या वाकई भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाकर ऐतिहासिक भूल को सुधारा है, जैसा कि गृहमंत्री ने दावा किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फैसले से दक्षिण एशिया में अस्थिरता का और हिंसा का नया दौर शुरू हो जाएगा? आप क्या सोचते हैं? इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हैं और खासकर कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है। बीबीसी उर्दू सेवा के हमारे सहयोगी शकील अहमद ने बात की श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से और जानना चाहा कि ताजा हालात कैसे हैं। सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी।
रियाज, आप हमें ये बताइए कि बहुत मुश्किल से रابطہ कायम हुआ है, क्या सूरत हाल है इस वक्त, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है वादी और दूसरी जगहों की?
जी देखें, न सिर्फ वादी बल्कि जम्मू के पूंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह में भी आज छठे रोज भी जो है, हुकूमत का कहना है कि ये सिर्फ दफा 144 के तहत रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मुकम्मल कर्फ्यू है। अब चूंकि हुकूमत ने कहा था कि ईद के सिलसिले में वो रिस्ट्रिक्शंस को ईज करेंगे, लेकिन शहर के उन इलाकों में जो हसास नहीं है वहाँ पे आने जाने की इजाज़त है, लेकिन जो हसास इलाके हैं जहाँ पर अक्सर मुजाहरे होते रहते हैं वहाँ पे सख्त नाकाबंदी है और सख्त कर्फ्यू है।
रियाज, ये बताइए कि वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं सौरा के इलाके में, लेकिन हुकूमत का कहना है कि ऐसा कोई छोटा मोटा ऐसा ही मुजाहरा था, प्रोटेस्ट था और कोई ऐसी टफ मुश्किल सूरत हाल नहीं थी, इसके बारे में क्या इत्तला थे? आप वहाँ मौजूद थे?
जी हाँ, हम चूंकि वहाँ मौजूद थे, जब पहुंचे तो वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जुमे की नमाज के बाद जमा हो गई। सोवरा का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, शेर कश्मीर चूड़ा मेडिकल साइंसेज, वही रास्ता ईदगाह की तरफ जाता है और वहाँ पे बढ़ते बढ़ते सिर्फ आधे घंटे में हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए और वो हिंद मुखालिफ मुजाहरे कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहले तो जाने दिया गया, लेकिन थोड़ा सा फासला तय करने के बाद एक जगह पे वहाँ पुलिस ने फायरिंग कर दी। पहले तो हवा में फायरिंग की, उसके बाद वो जो पैलेट्स होते हैं आहनी छर्रे वो बरसाने शुरू हो गए, तो उसके बाद बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए दाएं बाएं बिखर गए। उसके बाद हमने देखा कि जो सोवरा इंस्टीट्यूट है वहां पे 8 अफराद को लाया गया था, जिनमें 2 खवातीन भी थी, एक नौजवान की टांग में गोली लगी थी और बाकी जो लोग हैं उनको पैलेट्स आए हुए हैं, छर्रे लगे।
तो ये बता रहे थे रियाज मसरूर हमारे संवाददाता श्रीनगर से कि किस तरह से वहां पर कुछ झड़पों की भी खबर थी, जो कि जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर के सौरा इलाके में शुक्रवार को कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। इसमें शामिल इन लोगों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
ओवीसी साहब ने कहा कि सदन ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं।
माफी चाहेंगे, हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि वहां पर श्रीनगर में जो प्रदर्शन हुए सौरा इलाके में वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा। जैसा कि विषय है कि 370 को सरकार बता रही है कि हमने ऐतिहासिक भूल जो है उसको सुधारा है, क्या वाकई ऐसा है?
देखिए, बात यह है कि 370 एक वो चांद था जिसको एक्सेशन के टाइम दिखाना जरूरी था, दे या ना दे वो बात की बात थी, क्योंकि 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो कंडीशनैलिटीज थी उसका कोडिफिकेशन था और वो वक्त के साथ साथ वो चांद धीरे 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 छोटा होता चला गया। जैसे कि पहले वहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह से और जो प्रावधान थे जो केंद्र के वहाँ लागू नहीं होते थे उनको लागू करके उसमें डाइल्यूशन हुआ। लेकिन जो 35A था वो एक अश्योरेंस थी कि आपकी आइडेंटिटी, कश्मीरी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी और वो अश्योरेंस हमारी तरफ जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है उससे बहुत ही जुदा बनाकर पेश करती थी। हमारी तरफ का जो कश्मीर है वो बड़ा ही खूबसूरत और अपनी जो उसकी ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं वो रखे हुए था, कश्मीरियत, कश्मीरी चेहरे। आप उस तरफ कश्मीर चले जाएं तो आपको ज़्यादा काफ़ी पंजाबी चेहरे मिलेंगे। तो पंजाबीआइजेशन जो वहाँ पर कश्मीर का हुआ, हमारे यहाँ का वो कश्मीर वैसा नहीं चेंज हुआ। अब डर क्या है कि 35A जो एश्योरेंस था कि कश्मीरी आइडेंटिटी जो है जैसे आई थी भारत के अंदर जब वो अंग बना भारत का वैसे ही रहेगी, उस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मेरा ये मानना है और आशा करता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन कहीं भी विकास के नाम पे, विकास के एवज में आइडेंटिटी नहीं छीन सकते।
चलिए इस पे भी हम बात करेंगे, जिस तरह से जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसको लेके क्यों हम हटा रहे हैं उसको लेके उन्होंने बताया कि अपने तर्क दिए, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी आप क्या, आपका क्या कहना है इस विषय पर, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
जी मैं परवेज आलम बोल रहा हूँ, देवरिया गढ़वा खास से।
जी परवेज,
मेरा जहाँ तक मानना है कि हम गवर्नमेंट ने अपने आरएसएस के एजेंडे को फॉलो करते हुए कश्मीर को हमसे दूर कर दिया है, वहाँ के आवाम को हमसे बहुत दूर कर रही है। ये आने वाले समय में बताएगा, लेकिन हमारे दो तीन दोस्त भी हैं कश्मीरी, मैं उनसे दो तीन दिन से रابطہ करना चाह रहा था, कोई रابطہ नहीं हो रहा है। ये कैसे आइडियोलॉजी है कि हमको आपका मुंह बंद करके और आपको झंडा थमा दिया जाए, ऐसा है संभव?
शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, आपकी राय कार्यक्रम में शामिल हो गई। एक और श्रोता है हमारे साथ, जी अपना नाम बताएं।
सर राजन गुप्ता, प्रतापगढ़ मोहनगंज यूपी।
जी राजन, क्या कहना है आपका इस विषय पर?
सर सरकार ने जो मूव लिया है सर, ये बहुत अच्छा है देश हित में सर। कम से कम जो हमारा एक अंग कटा हुआ था हमसे सर, जिसको मुकुट कहा जाता है कहीं ना कहीं, अब वो कम से कम यहाँ ये तो लगेगा कि हमारा अंग है, अभी तक जो आधा तिहाई है, 1/3 था, और उसी का फायदा उठाकर 370 का पाकिस्तान वाले डिस्टर्ब वहाँ करते थे। चाइना भी उसी का आड़ में, जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है लद्दाख को लेकर, उल्टे सीधे बयान दिया करता था। तो सर विकास हो ना हो, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं, दलित हैं, उनका जो अधिकार चला जा रहा था उनको दिया ही नहीं गया था, वहाँ की नागरिकता भी नहीं मिली है उनको सर। जो भी है, लेकिन ये 370 और 35 से जो हटा सर, ये देश के लिए शायद बेहतर होगा सर। हमको जो लगता है, रही सर सब लोग उधर सब इसके फेवर में हो सर, ऐसा संभव ही नहीं है कि 100% लोग इसके फेवर में हो, क्योंकि
जी आपकी बात जो अभी तक जो आपने कही है वो हम समझ गए। विनोद जी, जिस तरह से ये राजन हमारे श्रोता वो कह रहे थे, और गृह मंत्री की भी ऐसी दलीलें थी कि विकास जो है उससे अछूता रह गया जम्मू कश्मीर 370 की वजह से, वहाँ पे उद्योग नहीं पहुँच पाए, उन्होंने कहा कि बस दो तीन परिवारों का ही वहाँ पे अखाड़ा बन गया था, इस तरह की उन्होंने बातें कही। क्या आपको लगता है कि उनके तर्क, और जैसे कि हमारे श्रोता कह रहे हैं,
देखिए ऐसा है जो माननीय होम मिनिस्टर ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, उस पर बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए, पर बदकिस्मती ये है कि लेजिस्लेट करने के बाद बहस हो रही है। ये बहस पहले होनी चाहिए थी। जो जो पॉइंट्स माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में दिए लोकसभा में और राज्यसभा में, वो सारे पॉइंट्स पे बिना 370 को लुप्त किए, उस चांद को लुप्त किए, वो चेंजेस लाए जा सकते थे, लेकिन सरकार ने कोई दूसरा उपाय ढूंढने की कोशिश की। इतने बड़े फैसले से पहले आवाम को उस फैसले के बारे में मुतमईन करना ज़रूरी था, और ख़ासकर मेरी नज़र में वैली के आवाम को मुतमईन करना ज़रूरी था। उसमें से बहुत से मुतमईन नहीं होते, लेकिन कुछ हो जाते, और वो रिजर्वायर जो है उसको आज के दिन उस पे हम नया जो आर्किटेक्चर है, नई इमारत बिल्ड करते।
जी, तो इस तरीके पे सवाल उठे, कांग्रेस ने भी उठाए, विपक्षी दलों ने भी उठाए कि आपने हमें भी विश्वास में नहीं लिया और आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया। इस पे भी चर्चा जारी रखेंगे। कुछ श्रोता अपनी राय रखना चाहते हैं। जी अपना नाम बताएं, अपनी बात रखें।
मेरा नाम उमाकांत है।
जी उमाकांत जी,
मैं समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ, बिहार से बोल रहा हूँ।
जी
यह जो कदम उठाई है भाजपा सरकार, ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। एक 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 देश एक कानून होना चाहिए, एक साथ एक झंडा होना चाहिए देश का। यह कदम बहुत पहले होना चाहिए था, ये बहुत पीछे हो गया इसी कारण से ये कश्मीर।
अच्छा उमाकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चलो आपकी राय जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो पिछड़ गया और आपको लगता है कि आपका इलाका जो है वो किस तरह से बेहतर है?
मतलब वहाँ पर ये 370 और 35 ए जो है इसके कारण से और इस पर पाकिस्तान का नजर था और वहाँ पर वह बाधित करता रह गया है इसमें, और यह उचित कार्रवाई नहीं कर पाती थी सरकार और उसमें वह आतंकवादी भेज करके और वहाँ पर परेशान करता था।
चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए विनोद जी। जैसा कि ये बात की, ये सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया 370 और उन्होंने कहा कि ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क का नाम लेते हुए कहा।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आवाम में आप उलझे हुए मसले रख देते हैं तो पॉपुलर डेमोक्रेसी जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को हरा देती है। आज के दिन बहुत भारी स्तर पे समर्थन है जो सरकार ने किया उसके लिए, लेकिन जो किया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के औचित्य से सही नहीं था। जिस तरह से पार्लियामेंट में इस बिल को बुलडोज किया गया, मैं समझता हूँ उससे बेहतर उपाय ढूंढा जा सकता था इसी उद्देश्य को पाने के लिए, और एक आवाज़ उठनी चाहिए थी हमारी पार्लियामेंट से कि जो हम कर रहे हैं हम सब मिल के कर रहे हैं। दूसरी बात, डॉक्टर करण सिंह ने जिसने कि सरकार के उपाय का समर्थन किया है, उन्होंने भी सरकार को ये सलाह दी है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थीं जिनको आज के दिन करप्ट और सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करने वाली पार्टीज कहा जाता है, जैसे कि PDP हो गई या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई, कि उन पार्टियों को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सरकार का उद्देश्य ये है कि जनता उनके लिए हुए कदम जो है उनके साथ जुड़ जाए, वैली की जनता, मैं जम्मू की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैली की जनता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर वैली कोई पीस ऑफ रियल एस्टेट नहीं है, ये एक जिंदा एंटिटी है, और उस जिंदा एंटिटी को भारत के साथ हमने अभिन्न अंग की तरह रखना है हमेशा, और उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ आउटरीच करनी पड़ेगी। वो किसके ज़रिए से होगी? तो मैं ये समझता हूँ आगे का रास्ता मुश्किल है, और उस मुश्किल रास्ते को पार करने के लिए भारत सरकार को हर स्टेक होल्डर को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि PDP और NC स्टेक होल्डर नहीं है तो मैं समझता हूँ वो गलती कर रहे हैं
जी। तो थोड़ी देर पहले हमने कोशिश की थी आपको जो कल श्रीनगर के सौरा इलाके में जो प्रदर्शन हुए थे वहाँ पे जो लोग शामिल हुए थे उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
हमें इराक पहले ना मंजूर था और ना अब मंजूर है, और आईन हिंद हमें कभी मंजूर नहीं था और ना होगा।
जितने भी यहाँ के कश्मीरी लोग हैं वो सब बाहर निकले हैं। हम आजादी चाहते हैं, भारतीय तसल्लुत से, इस साम्राज्य से हम आजादी चाहते हैं।
हम क्या चाहते हैं?
आजादी।
आजादी का मतलब क्या?
तो ये इस तरह से कल जो सौरा में प्रदर्शन हुए, कुछ लोग बाहर आए जब ईद जुम्मे की नमाज के दौरान वो कर रहे थे वहाँ पे गैदरिंग, उस दौरान की ये आवाज़ें हम आपको सुना रहे थे। तो जैसा कि आपने कहा, गृहमंत्री ने क्या कहा था जो जिस तरह से की पाबंदियां लगाई गई हैं उसको लेकर संसद में, आइए सुनते हैं।
मसूदी साहब, रेफरेंडम तो तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान ने 1965 के भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करा। रेफरेंडम UN के अंदर अब है ही नहीं, और UN ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वहां स्थिति बिगड़ी इसलिए कर्फ्यू नहीं डाला है, स्थिति न बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू डाला गया। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है मसूदी साहब।
तो ये जो स्थितियों की हम बात कर रहे थे, कर्फ्यू लगा है और बीच में जब लोगों को मौका मिल रहा है तो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, इससे जो चिंताएं जताई जा रही थी कि एक बार फिर कहीं कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी ही नहीं भारत पाकिस्तान और जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है, कहीं इसमें तनाव न पैदा हो जाए, क्या लगता है?
ईश्वर ना करे, और मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत समझ की ज़रूरत है और एकजुटता की ज़रूरत है। इसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए राजनीतिक दलों के बीच में, इसमें भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है, एक राय की जरूरत है, और उस एक राय को लेकर, उसको साथ लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरे वैली में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि भारत के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो आज भी उतना ही खूबसूरत है जितना 47 में था, और जो पाकिस्तान के पास है वो वैसा नहीं है जो 47 में था।
उसका चेहरा चीन को
उसका चेहरा बदल दिया गया है, और जो नॉर्दर्न एरियाज है, जो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके हैं, वहाँ शिया पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती थी, और वहाँ पर कुछ सुन्नी पॉपुलेशन वहाँ पर ले गई है पाकिस्तान। तो अगर वो फार्मूला इस तरफ लगना है तो सोच समझ के लगाना होगा, उनका जो एक्सपीरियंस है उससे गेन करके लगाना होगा। सरकार के पास चूंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उसके जो फैसले हैं उसकी इज्जत हमें करनी चाहिए, लेकिन उन फैसलों की क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए ताकि उन फैसलों में सुधार आ सके, और यही चेष्टा होनी चाहिए, और सरकार को उस क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए, और जो विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वहाँ जो निज़ाम बने वो पुख्ता निज़ाम हो, जनता में एक्सेप्टेबल निज़ाम हो, और ड्यूरेबल एग्जाम निज़ाम हो।
चलिए कुछ श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताएं।
हेलो हेलो हेलो
जी,
हेलो,
आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कमज़ोर करके किसी तरह की जिस ऐतिहासिक भूल का जिक्र कर रही है सरकार, उसको सुधारा है, कुछ ठीक हुआ है? चलिए एक और श्रोता है, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं।
हेलो
जी,
हम समस्तीपुर से बोल रहे हैं, रामुदार राय
जी।
मेरा कहना है, अभी जैसा कहा जा रहा है कि ये सबसे राय नहीं लिए, संसद में तो विधेयक लाया गया तो चर्चे के लिए लाया गया। दूसरी बात, जिस दिन 370 धारा लागू हुआ, क्या उस दिन जनमत संग्रह हुआ था?
शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और श्रोता है हमारे साथ, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। विषय है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कमजोर करके सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर आपकी राय क्या है?
हेलो
जी,
मैं मोहन सिंह बोल रहा हूँ।
जी मोहन जी,
जी मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये हुआ है ना धारा तोड़ने का काम, ये बहुत ही अच्छा हुआ है, पहले हो जाना चाहिए था, पर अभी भी अच्छा हुआ। तो अभी भलाई इसी में है कि पाकिस्तान चुप रहे और इसका स्वागत मतलब करे, खून खराबे से बचे, और हमारे भी देश को मतलब बहुत बड़ी मोदी जी ने खुशी दिलाई है, और जैसे वो मुक्ति करी थी कि धारा को छेड़ने से खून की नदी बह जाएगी, खून की नदी बही नहीं, जो पहले बह रही थी 42,000 आदमियों की, उसको रोका है मोदी जी ने। मेरा कहना मतलब यही है।
आपकी राय कार्यक्रम में शामिल होगी, है शुक्रिया। एक और श्रोता है हमारे साथ। जी अपना नाम बताएं और 370 पर आपका क्या सोचना है?
मैं अमर कुमार माझी दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ। सर मेरा कहना है कि यह जो मामला है वो हमारी सॉवरेंटी, हमारी जो संप्रभुता है उसके लिए एक अच्छा कदम है, जहाँ हमारा आधिपत्य हो, जहाँ हमारा जो शासन है वो पूर्ण रूप से हमारे पूरे भारत क्षेत्र पर लागू होना चाहिए, एक अच्छा कदम है, और दुनिया के लिए भी यह शांतिपूर्ण वहाँ का जीवन व्यतीत हो, वहाँ लोगों की हर तरह की समस्या का समाधान हो, यह अच्छा कदम है मेरा कहना है।
शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। तो विनोद जी, इस तरह से लोगों की राय आ रही है इस तरफ भारत, जो क्योंकि हम जम्मू कश्मीर से भी हमें श्रोता कॉल करते थे लेकिन कुछ पाबंदियां उसकी वजह से शायद कॉल नहीं आ पा रहे, उनका पक्ष नहीं आ पा रहा, लेकिन ये भी प्रश्न है कि उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, और जब इस तरह से कर्फ्यू लगाया गया है और जब हमने ये देखा कि कुछ ढील मिल रही है, तो कुछ लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है, अब ईद भी आने वाली है, तो इसको लेके पाकिस्तान की तरफ से प्रश्न उठाए गए कि भाई ये तो जबरन एक फैसला थोप दिया गया, इसको लेके तनाव भी पैदा हो गया है, कुछ तरफ चीन की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। तो जिस स्थिरता की हम बात कर रहे थे, अगर ये हालात, ईश्वर ना करे अगर ऐसा हो, तो क्या स्थिति खराब हो सकती है, ये फैसला बैकफायर कर सकता है?
पाकिस्तान को मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जिस तरह से उस कश्मीर को रखा हुआ है, हम 2004 में हम पत्रकार लोग, कोई 32 पत्रकार उस तरफ गए थे, गिलगित तक गए थे हम, मीरपुर मुजफ्फराबाद, और वहाँ पर हमको कुछ ऐसे लोग मिले जो बंदूक उठा के उस तरफ गए हुए थे, और उन लोगों ने हमसे गुजारिश की और हमने कहा हम तो सियासतदान हैं नहीं, हम तो पत्रकार हैं। उनकी हमसे गुजारिश थी कि वो एमनेस्टी हमको दिलवाएं, हम उनको दिलवाएं ताकि वो वापस आ सकें। और उनमें से हमने कुछ लोगों से पूछा कि आप क्यों वापस आना चाहते थे, वो कुछ JKLF के लोग थे, तो कहते थे कि जो बात हम अपने कहना चाहते थे वो बात कहने में हमें उधर ज़्यादा आज़ादी थी और इधर आज़ादी नहीं है। उसी तरह से एक हमें जूनियर इंजीनियर मिला जो कि बंदूक उठा के उस तरफ चला गया था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। हमने कहा तुम क्यों वापस जाना चाहते हो, कहता जी मैं वहाँ ज़कात दिया करता था, यहाँ ज़कात पर ज़िंदा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय सरकार को और भारत के आवाम को परस्पर इस बात को अंडरस्कोर अंडरलाइन करना चाहिए कि बावजूद इसके कि जो कुछ तशद्दत हुई हमारी तरफ के कश्मीर में, हमारी तरफ के कश्मीर में आज भी ज़्यादा आज़ादी है। और दूसरी बात, भारत सरकार को एक कदम तुरंत उठाना चाहिए कि रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे कश्मीरियों के संदर्भ में जो बातें की जाती हैं, जो उनकी साइकोलॉजिकल एलिनेशन बढ़ाती हैं, उन पे अंकुश लगना चाहिए। इस दौर में बातचीत शुरू होनी चाहिए वहाँ के आवाम से, और वो बातचीत का माहौल बनाने के लिए टेलीविज़न पे जो गाली गलौच होता है उस पे अंकुश लगना चाहिए। ये पहला कदम। दूसरा, जो कि मेनलाइन इंडिया में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो विजिलेंटिज्म जिसे बोलते हैं, गौरक्षक जो गड़बड़ करते हैं, उसके बारे में सरकार बोलती है लेकिन वो जब इवेंट्स हो जा इंसिडेंट हो जाते हैं तो फिर मानस पे असर पड़ता है वैली के, तो उस पर भी मैं समझता हूँ सुचारू रूप से अंकुश लगना चाहिए, कंटेनमेंट होनी चाहिए, जो लोग ऐसा करते हैं उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो ये सब शुरुआती दौर में होना चाहिए और ये होगा तो मैं समझता हूँ वहाँ पर हालात सुधरेंगे।
चलिए अब हमारे श्रोता हैं कुछ, वो हमारे साथ अपनी बात साझा करना चाहते हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें संक्षेप में।
हेलो
जी, क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम यशवंत यादव है, मैं दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज से बोल रहा हूँ।
यशवंत, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से अब क्या लगता है कि हालात को सामान्य करने के लिए क्या होना चाहिए?
जी आपके विशेषज्ञ सर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, जो कुछ भारत सरकार ने जो फैसले लिए उसके साथ हैं हम, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह का गाली गलौज करना, मिठाई बांटना ये उचित नहीं है। कश्मीरियों के मनोबल को ठोकर नहीं मारना चाहिए हमें। दूसरा, मैं एक विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ, दक्षिण एशिया में क्या स्थिति बनेगी, ये विषय आपका था
जी।
तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सर, परिणाम तो कुछ ना कुछ होगा ही, उसके लिए तैयार जरूर रहना चाहिए, लेकिन उस परिणाम के भय से कोई फैसला लेने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। कुछ और श्रोता हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। जी अपना नाम बताएं और संक्षेप में अपनी बात रखें।
जी मुख्तार भागलपुर से बोल रहा हूँ।
जी मुख्तार जी बताएं।
जी मेरा कहना सर कि अब तक जितनी भी सरकार आई भारत में
जी,
ये सब धोखाबाज नहीं था, लेकिन ये धोखा दे के कहा गया कि पाकिस्तान हमला करने वाला है इसलिए हम मन पटखोर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हुई 12 बजे रात में ही अपने मन से जो है ये लागू कर दिया, हटा दिया धारा। इसी पक्ष से या विपक्ष से सब पहले बातचीत करनी थी, तब ऐसा करना था या पहले कह के करना था।
जी बहुत तो बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, आपकी बात हमारे कार्यक्रम में शामिल होगी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आखिर में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अब संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अब जो हो गया है, तनाव बना हुआ है, उसको कम करने के लिए अब क्या कोशिश होनी चाहिए, क्या पहल होनी चाहिए?
जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो प्रतिबंध लागू हैं उनको हटाया जाए। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि ईद मनाने के लिए सुचारू प्रबंध किया जाएगा, जनता को फ्रीडम स्वतंत्रता दी जाएगी, उससे शुरुआत की जाए। और दूसरा, माननीय गृहमंत्री ने कहा था कि जल्दी से जल्दी जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस है उसको फुल स्टेटहुड में तब्दील किया जाए, तो उस कोशिश की शुरुआत अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि वो जो डाउनग्रेडेशन है वो लोगों के मन पे लगी है,
यानी कि लोगों के दिल में धीरे धीरे भरोसा जगाने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उनसे क्षमा चाहेंगे जिन्हें कम समय होने के कारण हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। BBC की सभा में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला हमारे सहयोगी राजेश चौहान ने। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें, नमस्कार।